Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे
गोविंदा
रहे गोविंद ंगशंकरम प्रचितमे भवया तव पाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
தூரி அச்சு நீ லக் ரீ பிச்சே ஆகி ஆஜாய் கோஜி சார் ஆகி கா சேர் சாரா காலி டா மேரே சே லால் கப்பட லால் ரங் மதலோ கத்ரா இல்லை ஆகி சேர் காலி ஃபிரி பிச்சே பேட ஆகி ஆஜாய் பிரபுஜி தோடா கஷ்ட கீஜிய ஆலஸ் கீஜிய ஆலஸ் கோ தியாகி ஆகி ஆஜாய்
இதர் காலி சீட் பிரவத்தி டெண்டன்சி சபக்கு அந்த ஆஜ்கே யுக கா சபசே படா துக் கி பாத் யீ இம்பர்சனலிஜம் lack of relationship. ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں کئی برسوں سے لیکن بانڈنگ نہیں ہے. کشٹ ہے اس کا, سب کچھ ہے لیکن پریم نہیں ہے. اس لیے دور بیٹھے कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन लेकिन मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है. उसके अगल बगल में जब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, उसको लगना चाहिए. अगर वो मनुष्य है, पशु को इतना नहीं है. पशु में भी कई पशु ऐसे होते हैं जो कि काफी समाज में रहना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते. तो हमारी प्रवृत्ति है कि हम ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहते. क्यों? ज्यादा नजदीक आए तो क्या होगा? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, छू लिया तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए. आप बोलेंगे मेरे को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक लगा नहीं है. लेकिन मुझे क्या पता, इसलिए नजदीक नहीं जाना ज्यादा. उसी तरह से हम दूर जाना चाहते, दूर रहना चाहते हैं. ज्यादा नजदीक गए तो फिर शौक लग जाएगा, है ना? यस. कई बार हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों दूर बैठ रहे हैं, हमको खुद ही पता नहीं है. लेकिन इसलिए सीखना है हम सबको. उम्र बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता. जो व्यक्ति का हृदय बड़ा होना चाहिए, विचार बड़े होने चाहिए. विचारों में कमी है, तभी तो आज समाज में इतने बड़े लेवल पे अशांति और दुख का माहौल है. इतना भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार सब क्यों फैला हुआ है? बड़े बड़े लोग ही कर रहे हैं, ऐसे थोड़े कि बच्चे व्यभिचार करते हैं. बच्चे भ्रष्टाचार नहीं करते. इसलिए सीखने की आवश्यकता है. केवल पीएचडी डिग्री हासिल करने से व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं होता, इसलिए सीखना है. बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी जीवन में, इसको समझना है. तो व्यक्ति
बड़ा होता है उसके विचारों से,
उम्र से नहीं। उम्र से तो फिर वृक्ष जो है 500 वर्ष का वृक्ष खड़ा है, 500 वर्षों से उसने सारी दुनिया देखी, 500 वर्षों तक है कि नहीं, है ना। एक कहावत में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। खजूर का पेड़ देखा आपने, बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा, लेकिन उससे क्या फायदा है, किसी को उससे छाया नहीं मिलती है कि नहीं, और फल भी इतना दूर। इसलिए हमें सीखना है ना। अभी पहले बता रहे थे कि भारत में जो है वो हमारे देश में इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, अनपढ़ लोग थे, इसलिए लोग सोचते थे कि इसीलिए देश में इतनी सारी समस्या है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं। और अगर साक्षरता अभियान चलाया जाए, सब एजुकेटेड हो जाएंगे, तो देश सुखी हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। एक समय ऐसा था, एक क्रांति चली थी, सबको साक्षर बनाना है कि नहीं। और सबसे नंबर वन स्टेट जो देश का है, सबसे ज्यादा साक्षर है, कौन सा स्टेट है, केरला। सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए केरला का, है कि नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सब नंबर वन स्टेट जो सुसाइड में है, केरला चल रहा है जिस पूरे भारत में। व्यभिचार और सुसाइड नंबर वन, और पहला क्रिश्चियन स्टेट, जहाँ की 90% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन बोलते हैं कि हम लोगों को सुखी बनाएंगे, क्या करके, शिक्षा देकर, हॉस्पिटल देकर सुखी बनाएंगे। तो क्यों सुखी नहीं बना रहे हैं केरला को, बताइए, क्यों सुसाइड कर रहे हैं लोग, मेरी क्रिश्चियनिटी बढ़ गई वहां। तो जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं है, उसके पीछे कई सारी बातें हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े आईएएस अफसर सब मिलके जो पॉलिसी बनाते हैं, वो भी बेकाम की पॉलिसी, कोई हेल्प नहीं हो पा रही, कुछ नहीं कर पा रहे, सब मुंह देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं सब, क्योंकि किसी को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कैसे सुधारा जाए। और सबसे बड़ा अज्ञानता जानते हैं क्या है, कौन बताएंगे, सबसे बड़ी अज्ञानता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपने को बहुत ज्ञानी मानता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो अज्ञानी है वास्तव में, लेकिन मानता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी। सही बताया आपने, अहंकार, अहंकार के कारण वो ऐसा सोचता है, इसलिए वो सीखना नहीं चाहता। और अहंकार का सूचक क्या है, कैसे पता चलेगा हमारे अंदर अहंकार है, हम सीखना नहीं चाहेंगे, हम सिखाना चाहेंगे सबको। जैसे मैं यहां बैठा हूं, इस सभा में सबसे बड़ा अहंकारी नहीं, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूं। तो जो व्यक्ति सीखना चाहता है वही महान है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका प्रोग्रेस रुक जाता है ना। तो इसलिए अपने हृदय को खोलना चाहिए हमें, लेट द नॉलेज एंटर, घुसने दीजिए ज्ञान को, अंदर जाने दीजिए, होल्ड मत कीजिए, नहीं मेरे को नहीं जाने देना है, रोजी कुछ भी बोल ले, मेरे को तो वही करना है जो मैं करूंगा, मैंने सोच क्या है, मेरा लाइफ सेट है, मेरे विचार फिट हैं, सेट हैं,
कई लोग तो इस भाव से भी आते हैं कि प्रभु जी को हम आज सिखा देंगे, आज इनको मैं दिखा दूंगा जी। तो इसलिए बहुत सीखना है। जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम अगर इस जीवन में सीखते नहीं है तो हम पशु के समान हैं। और आप लोगों के साथ एक समस्या भी है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग। और कुत्ता बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको नया ट्रिक आप नहीं सिखा सकते। और इन अदर सेंस, जो बांस की जो बत्ती होती है ना, जब बांस कच्चा होता है तो आप उसको मोड़ सकते हैं, और पक जाएगा तो मोड़ेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। जैसे जब उम्र 30-35 साल से ज्यादा हो जाती है जब, तो व्यक्ति को चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप में से ज्यादातर लोग का वो रेंज है ना, इसलिए आपको फिर में सावधान थोड़ा कर रहा हूँ कि खोलिए अपने को, है ना, नहीं तो बड़ा कठिन होगा इस ज्ञान को अंदर जाने, ठीक है ना। और केवल बैठने से यहाँ पे थोड़े ना सीख जाएंगे। बोलेगे प्रभु जी कान तो है, कान से तो सुन रहे हैं, क्यों नहीं सीखेंगे। नहीं, हम कानों से नहीं सुनते, कान खुले हैं लेकिन फिर भी बंद हो सकते हैं, जानते हैं। खुले कान भी के अंदर भी कुछ नहीं घुस सकता। एक मान लीजिए यहाँ पे एक कबूतर आ जाए और पूरे क्लास भर बैठा रहे, वो सीख पाएगा, क्यों नहीं सीखेगा, क्योंकि वो समझ नहीं सकता इसको। कान में तो उसके जा रहा है आवाज, लेकिन उसको समझ नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सीखना है। क्यों? बहुत ध्यान लगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है इसमें। जिस जो हमारी रुचि है उसमें अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं लगाओगे तो भी आप काम कर सकते हो, है ना। थोड़ा भी बताया जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जल्दी पकड़ में आ जाएगा न्यूज, है ना। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब बताया जाएगा तो हमारा मन उसका उसमें रुचि तो भागता है, कहाँ बैठ गया तू, है ना। अब बैठ भी गया तो फिर वो यहाँ पे रहेगा नहीं, कहते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट मेंटली अब्सेंट, बैठे हुए हैं लेकिन नहीं है यहाँ, हो सकता है ऐसा। यस, बैठे हैं क्लास में लेकिन है कहीं और, मन भागा गया, भाग गया है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है आपसे से ये प्रार्थना है, क्योंकि आदेश तो नहीं दे सकता, आपसे मेरे से बड़े हैं, है ना। तो आज हम सब भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, और इस अध्याय को अगर आप समझ लेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण अध्याय, कितने ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। इसमें भगवान ने बताया कि कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। अनन्यचेता सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यायुक्तस्य जोगिनः। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। फिर मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तदात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पर पूर्ण भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद प्रथम अध्याय दूसरा से तीसरे श्लोक तक कहा गया है, जमे वैश प्रीणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप समझ सकता है। तथा गीता में भी दसम अध्याय दसवां श्लोक कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं वहाँ रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु, वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य सब शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, इनके लिए सहज भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी पांच प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा दास भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्ति में से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनने वाली पश्चात विस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे जो श्लोक है इसमें भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पे अनन्य भाव की बात की गई है, बड़ा कठिन है।
अनन्य का मतलब न अन्य,
केवल एक ही व्यक्ति का चिंतन करना है और उन्हीं का स्मरण करना है, और जो ऐसा कर पाएगा वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। कई लोग आते हैं क्लास में आ तो बोलते हैं मैं नहीं मानता भगवान को, मेरे को दिखाइए भगवान, पहले मेरे को भगवान दिखाइए फिर मैं मानूंगा कि भगवान है ना। मेरे को जाइए भगवान को अपने बुला के लाइए, मेरे को आके दिखा अपना दर्शन देंगे फिर मैं माला शुरू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता, मैं अंधविश्वास नहीं करता। ऐसा कई लोग बोलते हैं क्यों मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता, मैं जो जो देखा उसी पे विश्वास करता हूँ। सर मैंने भगवान को आज तक नहीं देखा, मैं क्यों विश्वास करूँ उनपे, उनका नाम क्यों लो, है ना। तो 99% लोग ऐसे ही है, यहाँ तक कि जो लोग मंदिर भी आते हैं वो भी ऐसे ही, मंदिर आने का मतलब ये नहीं कि भगवान पे विश्वास है उनपे। कई लोग ऐसे हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मंदिर तो आते हैं लेकिन भगवान पे उनको पूरा विश्वास 99% लोग। तो फिर मंदिर क्यों आते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वैसे तो उनको पूरा विश्वास है कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस हो गए तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। समझ बात को, समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, इसलिए चलो रिस्क क्यों लेना है? एक दिन अटेंडेंस बना के आ जाते हैं और मान लो अगर हुए लास्ट में मृत्यु आई और पता चला कि है तो फिर बता देंगे कि एक दिन आया तो था। इसलिए ना इंश्योरेंस करा के जाएंगे पूरा, क्या हर्ज है एक दिन चले गए, इसलिए रिस्क नहीं लेना, इसलिए आते हैं मंदिर। लेकिन किसी को 100% विश्वास नहीं कि अगर 100% विश्वास है तो व्यक्ति कभी भी पाप कार्य कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। जो पाप कार्य में रत है इसमें मतलब उसको विश्वास नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में ऐसे तो कई धर्म ध्वजी हैं, धर्म ध्वजी मतलब जानते हैं, तो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता की पहचान तब होती है जब व्यक्ति को भगवान पे 100% विश्वास हो जाएगा। भगवान अवश्य हैं, अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा के लिए मेरे को पाप करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए वो कितना भी माया उसको प्रलोभन देगी, कितना भी माया उसके सामने प्रपोजल्स देगी है ना, वो नहीं झुकेगा, धर्म के मार्ग से कभी भी खिलेगा नहीं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है शास्त्र में, आप सबने सुना होगा। हरिश्चंद्र जो थे राजा थे, वशिष्ठ मुनि उनकी सत्यवादिता से इतने खुश थे, राजगुरु थे, तो विश्वामित्र से डिस्कस कर रहे थे कि मैंने देखा है इससे बढ़ के आज तक सत्यवादी मैंने कभी नहीं देखा। विश्वामित्र मुनि को लगा, अरे ऐसा है क्या, मैं इसका टेस्ट लूंगा, मैं नहीं मानता। उन्होंने उनको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया विश्वामित्र ने, है ना, ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, उनके सपने में आए और सपने में उनसे वचन ले लिया कि मैं ये राज्य आपको दान में देता हूँ, और सपने में वचन दिया। सुबह पहुंच गए, बोले आपको, आपने मेरे को वचन दिया था कि आप दान दे दिए राज्य। ये कब दिया था, आप सपने में दिए थे। बोला हाँ वो तो दिया था मैं। तो सब निकल गए राज्य छोड़ के, सब ने सपने से वचन दिया था। हम लोग तो सामने ही वचन देके, कब कहा था आपने, ज्यादा सीरियस ले लिया वो तो मजाक नहीं बोला था, है कि नहीं ना? जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटर है सब गीत वचन लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह कि मैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व ले रहा हूँ मिनिस्टर का, उसको बड़ी ही ईमानदारी के साथ करूंगा, करते हैं ना, वचन लेते हैं ना, शपथ। राजा हरिश्चंद्र निकल गए, पत्नी और बच्चे वो भी निकल गए। फिर विश्वामित्र ने उनका टेस्ट और टफ बना दिया, और एक दिन के अंदर राजा से बिल्कुल रंक हो गए, सब कुछ खत्म, भीख मांगने लगे रोड पे। उसके बाद उसी परिस्थिति आई, फिर सिचुएशन आई कि उनको अब पैसा देना था, कर्ज आ गया किसी तरह से उनके ऊपर, तो कर्ज चुकाने के लिए उनको अपनी पत्नी को बेच देना पड़ा अपने वचन को रखने के लिए। फिर उसके बाद खुद वो और कर्ज नहीं चुका पाए उससे भी, तो वो जो है वो श्मशान घाट में जाके और मुर्दे जलाए जा रहे थे, वहां पे उसके नौकर बन गए ताकि पैसा मिले तो वो पैसा चुका सके। उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं हो रहा था, तभी उनका जो पुत्र था रोहित, उसको सांप ने डस लिया, और उनकी पत्नी जो थी उसी पुत्र को लेकर उसी श्मशान घाट पे आई जहाँ पे कि वो पैसा लेकर तब जलाते थे, लेकिन पत्नी के पास पैसा था नहीं ताकि बेटे को जलाया जा सके, तो रोने लगी। अपनी ही पत्नी को बोल दिया, नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मैंने वचन दिया अपने मालिक को कि बिना पैसा लिए जलाया नहीं दूंगा। बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। बोला कोई भी हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं सकता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। उसकी कितनी बड़ी परीक्षा है, कितना हृदय पे कितना पत्थर रखकर उन्होंने ये बात बोली होगी सच्ची। और जब उन्होंने इतना कहा तब जो है आकाश से पुष्प गिरने लगे उनके ऊपर, सारे देवता प्रकट हुए, उन्होंने उनका बहुत गुणगान किया। विश्वामित्र मुनि आए, बोले मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, आपके सत्य की परीक्षा, सत्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं, ऐसे आसानी से भगवान नहीं ले जाते, लेकिन हाँ भगवान सुलभ हैं, इसके लिए जो उन पर विश्वास करता है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके विश्वास की परीक्षा भी होती है। कई बार लोग आते प्रभु जी आप लोग ये माला क्या करते हैं, माला सब कुछ ये सब इसकी क्या जरूरत है, अगरबत्ती ये सब क्या जरूरत है, इतना ये सब क्या जरूरत है, भगवान तो मन में है, मन में विश्वास की चीज है, इतना आसान है विश्वास विकसित करना, इतना आसान है, बहुत कठिन कार्य है। तो ये जो विश्वास भगवान के, तो कई लोग आते हैं पहली बार बोलते हैं मेरे को भगवान दिखाइए, लेकिन भगवान दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कोई भी आपको नौकरी चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी योग्यता, आप नहीं बोलते कि मेरे को बना दीजिए आईएएस ऑफिसर, उसके लिए आपको योग्यता विकसित करनी पड़ेगी ना, ये सर नो। बिना योग्यता विकसित किए हुए आप उस पद को नहीं प्राप्त कर सकते, उसी तरह से भगवान, जैसे आपको राष्ट्रपति से अगर मिलने जाना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं, मेरे को राष्ट्रपति मेरे सामने लेके आ जाइए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि राष्ट्रपति है भारत का, मेरे को विश्वास नहीं है भारत का राष्ट्रपति है, मेरे सामने उसको लाइए दिखाइए, आगे खड़ा होगा तब मैं मानूंगा कि राष्ट्रपति है, तो क्या आएगा राष्ट्रपति आपके सामने, बताइए, नहीं आएगा। तो जब राष्ट्रपति एक छोटे देश का राष्ट्रपति नहीं आते तो भगवान तो कई ब्रह्मांडों के राष्ट्र के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति हैं, वो क्यों आएंगे आपके सामने, सही नहीं, क्यों आएंगे हमारे सामने, इतना आसान है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं। तो भगवान को अगर देखना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सस्ते में भगवान दे रहा है तो अच्छा तो लगेगा कि बड़ा सस्ते में मिल गया है कि नहीं, लेकिन सावधान रहना चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको सस्ते में मिल रही है, महंगी चीज, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई आए आपके पास, आए आपके पास बोले है ना, जैसे एक बाघ था रास्ते में पड़ा हुआ था, बूढ़ा हो गया था है ना, बाघ जो है उसके पास सोने के कंगन थे, तो उस रास्ते से राहगीर जा रहे थे, तो बाघ बूढ़ा हो गया था, सब इतना बूढ़ा हो गया था कि उड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इसलिए उसको खाना नहीं लगा नहीं कई दिनों से, तो सोचा कि मैं कैसे खाऊं, बहुत भूखा था और कोई आता नहीं था उसके सामने पास, क्योंकि सब जानते थे कि नजदीक जाऊंगा तो खा जाएगा, तो बाघ एक राहगीर था, तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ सोने के कंगन थे, तो अपने हाथ में ले लिया और ऐसे ऐसे घुमाने लगा बाघ, एक राहगीर बोला आप सोने के कंगन ले लो, सोने के कंगन लो, मैं देना चाहता हूँ, मैं मरने वाला हूँ, इससे पहले मैं किसी को देखे राहगीर बोला मैं तेरे को विश्वास क्यों करूँ, तुमने तो अभी तुम तो बहुत खतरनाक जीव हो, तो बोला नहीं नहीं मैं अब सुधर गया, अब मैं देखो अब क्या करूंगा, मैं अभी मृत्यु आने वाली है, अब थोड़े ना पाप करूंगा, अब मैं सुधर चुका हूँ, ले लो, तो उसको लालच आ गया है ना, तो गया विश्वास किया उसने उसको खा गया है ना। तो कोई भी चीज अगर कोई आपको कंगन दे रहा है फ्री में जैसे बाघ आपको कंगन दे रहा है, तो आपको क्या सोचना चाहिए, सोचता है कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है नहीं, कोई कैसे फ्री में देगा, ठीक है नहीं, इसलिए कई बार लोग यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में, बोलते प्रभु जी आप लोग फ्री में प्रसाद देते हो, फ्री में लेक्चर भी सुनाते हो, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है हिडन एजेंडा है ना, कुछ तो है आप लोगों के, आप बताते नहीं हो लेकिन कुछ तो होगा, तो कहीं पे भी हम अगर हमको कोई चीज सस्ती भी मिले तो हम क्या करते हैं, डाउट करते हैं, है ना। कोई आप व्यक्ति आए आपको बोले मेरे पास एक बड़ा हीरा है, मेरे को बहुत भारी लग रहा है, मैं हीरा मैंने नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं नहीं, आपको पैसा नहीं लूंगा, आप ले लीजिए, सस्ते में दे दीजिए, चलिए आप मेरे को ना 5,000 रुपया दे दीजिएगा। कोई आपको 5,000 में हीरा दे रहा है, आप लेंगे क्यों नहीं लेंगे, समझ जाएंगे कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसी तरह से कोई आपको सस्ते में भगवान दे रहा है, बोल रहे मेरा शिष्य बन जाइए, है ना, बस करना क्या है मेरे को गुरुदेव, करना क्या है, बस शिष्य बन जाइए, और क्या करना है, कोई नियम नहीं है, नियम की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, फिर नियम से ही अगर आप भगवान को प्राप्त, गुरु क्या जरूरत है, फिर मेरे को करना क्या पड़ा, बस कुछ ना भेजते रहिएगा एक महीने पे या दो दो महीने पे टैक्स भेजते रहिएगा, एक मंत्र ले लीजिए 50 रुपए का, इसको जपते रहिएगा, ठीक है, और दूसरों को भी है ना चेन रिएक्शन, अपने पड़ोसियों को भी 50-50 ला के दीजिएगा, क्या इससे मेरे को भगवान मिल जाएंगे, हाँ आप मेरे पर विश्वास रखिए जरूर मिल जाएंगे, कई सारे ढोंगी बाबा है, कई सारे ढोंगी, आज तो समाज तो भरा हुआ है ऐसे ढोंगी, शास्त्रों में बताया गया कि कलयुग में जो आध्यात्मिक गुरु होंगे वो सब पिछले युगों में जो जो राक्षस बच गए भगवान मार नहीं पाए वो सब कलयुग में गुरु बन के आएंगे। मेरे को अपने बारे में नहीं पता। है ना, लेकिन ऐसा शास्त्र में लिखा है ना कि जो आएंगे और उनका काम वही होगा जो पिछले युगों में करते थे, काम वही करेंगे, केवल रूप अलग होगा। पहले तो असुर के रूप में थे तो लोग समझ जाते असुर है, भगवान से दूर ले जाएगा हमें, है कि नहीं, तो उनका काम काफी डिफिकल्ट था क्योंकि लोग पहचान जाते थे, लेकिन कलयुग में आसान हो गया उनका काम, है ना। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया है कलयुग में शुद्ध वस्तु प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए बताते हैं प्राणल पायुषा पुंस कलावस्मिन युगे जना मंदास्त मंद मत हो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग में लोग जो है वो बहुत मंद भाग्य है। मंद भाग्य मतलब क्या कि एक तो मंद है, मंद मतलब बहुत लेजी है, आलसी है? आलसी किसने है, केवल राम नाम में आलसी है, हर चीज में आलसी नहीं है। बाकी तो आप देखो 15 घंटे 16 घंटे ऑफिस में जितना जॉब कर रहे हैं इतना टेंशन। मैं जब जॉब कर रहा था हमारा एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट था बेंगलोर में, तो उसपे मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे एक्टिव, इतने एक्टिव थे, तो मुझे जब देखते थे तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन मेरे को बुला बोले बहुत क्रोध से बोले तुम इतने शांत क्यों रहते हो, और मैं क्या करूं मेरा स्वभाव है और जबरदस्ती अशांत थोड़े हो जाऊंगा। बोले हम मेरे को इतना टेंशन है तुम इतना शांत हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं बोला बड़ा है तो मैं क्या करूं, मैं तो जितना मेरे सोचा था मैं कर रहा हूँ प्रयास। तो बहुत डांटा मैं बोला चलो क्या कर रहे डांट रहे तो इतना ही समझ। उसके बाद 2 दिन के बाद वो मर गए, हार्ट अटैक हो गया। 2 दिन के, सही बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस। था ना, दो दिन में प्रोजेक्ट से छोड़ के चले गए। इतना टेंशन था तो क्या प्रोजेक्ट रुक गया उनके बजाय उनके जाने से? रुका नहीं, फटाक से एक फोटो लगाया गया ऑफिस में, एक माला चढ़ाया गया, दूसरा व्यक्ति चेयर पे बैठा, काम चलता रहा। ये संसार किसी के लिए रुकता नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढात्मा करता हम इतने। मूर्ख जीवात्मा ये सोचती है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बजाय का काम रुक जाएगा, इतना टेंशन। तो तुम्हें बता रहा था कि कैसे आज के समय में है ना, तो ये इतना मुश्किल हो गया है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। जो लोग इतने एक्टिव हैं इस मटेरियल कार्य भौतिक कार्यों के लिए, अपने प्रोजेक्ट मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता सकता है, इतने एक्टिव है कि मर गए हार्ट अटैक से, है ना, इतना टेंशन। लेकिन उनको बोल दिया जाए कि आप आके थोड़ा एक घंटा भगवद गीता पढ़िए, एक्टिव तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बिजी है, इसलिए मंद है हम लोग किसमें, स्पिरिचुअल लाइफ में। आध्यात्मिक जीवन में बहुत लेजी है और मंद भाग्य। अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है भी, अगर कुछ लोगों का है इंटरेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उनका भाग्य खराब है। भाग्य कैसे खराब है? जैसे आप गए मार्केट में, आपको तबीयत खराब हो गया, आपको दवाई लेनी है, आप मार्केट में गए, दो दुकान है, ठीक है, एक दुकान पे सही दवाई है, एक दुकान पे नकली दवाई है। अब आप जब पहुंच गए नकली वाले दुकान पे, दोनों आपके सामने है, लेकिन आप कहाँ चले गए? ये क्या है? मंद भाग्य। और इतने ज्यादातर दुकानें नकली, उसमें बहुत मुश्किल से एक सही दुकान मिलती है, ये मंद भाग्य है। क्योंकि इतने सारे मतभेद, मत इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे संस्थान आध्यात्मिक, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं, इतना कंफ्यूज है वो। इसलिए कलयुग में इतने प्रकार के डाइवर्शन, तो कैसे भगवान को समझेगा? बड़ा कठिन है। लोगों तो भगवान को दिखाई है नहीं। तो असली हीरा जो है आपको प्राप्त होगा कब, उसके लिए असली कीमत। अगर कोई फ्री में दे रहा है आपको, भगवान बोले आप टेंशन मत लो, इस्कॉन वाले बहुत नियम बताते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ कोई नियम नहीं है, बस आइए आराम से, जो भी खाना है खाइए, जैसे भी सोना है सोइए, जो भी आचरण 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 मत पूछिए, आचरण क्यों, कौन सुधार सका है, मैं भी सुधार सका। कई बार तो भगवान की तो उंगली उठा लेते हैं ऐसे लोग, आप भगवान को ही देख लो, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आचरण की जरूरत नहीं, किसी जरूरत है, बस मेरा फॉलोअर बन जाइए, मेरे को नोबेल प्राइज जीतना है शांति का, और उसके लिए मेरे को ज्यादा फॉलोअर चाहिए, शांति का नोबेल प्राइज जीतना है मेरे को। मेरे जीवन में आप क्या परिवर्तन लाओगे? परिवर्तन क्या, सब ठीक है, हम यही सुनना चाहते हैं। अगर आपको कोई बोले नहीं नहीं आप बहुत महान हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो कैसा लगता है? प्रभु जी आपने वास्तव में मेरे को समझ लिया। इस कौन वाले समझते नहीं, बोलते आपके अंदर ये कमी है, ये भी गलत है, ये भी गलत, क्या है? कोई तो है जो मेरे को बोले कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, इसलिए आप बड़ी आशा से आया था आपके पास। तो ऐसे गुरु हैं, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, खाना मांस खा सकते, हाँ हाँ उसमें क्या है, सब खाइए। और क्या क्या खा सकते ये मत पूछिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए। शराब हाँ हाँ, उसमें क्या बुराई, वो भी तो है ना, भगवान ने ही दिया है। एक व्यक्ति आए मेरे पास बोले, तो जी भगवान ने दिया है तो आप क्यों मना कर रहे हैं, आप कौन होते हैं बीच में आने वाले, भगवान ने जगत दिया है, पशुओं को बनाया है, हमारे खाने के लिए तो बनाया है। भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया, सब खाओगे, भगवान ने जहर भी बनाया खाओगे हैं? तो चुप हो गया, भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गीता में बताया भी है कि मैंने ये भी बनाया ये भी बनाया, लेकिन ये वाला मत खाना ये वाला खाना, यही बता रहे हैं ना, इसीलिए तो भगवत नहीं तो बना के छोड़ देते और उसी से सब कुछ सीखना होता तो इसकी क्या जरूरत थी, आके बोलने की क्या जरूरत थी फिर। इसलिए भगवान आके बताते हैं इसको बताए, लेकिन ये मत करो ये वाला करो, ये ठीक है ये गलत है बताते हैं ना। तो इसलिए लोग जो है वो समझते नहीं है, और कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कैसे भी रहो पाप भी करो कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भगवान मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब आपको धोखा दे रहा है, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए हमारी समझने के लिए। भगवान को प्राप्त करना आसान चीज नहीं है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, अपनी दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे पता किया जाएगी कौन जेन्युइन व्यक्ति है और कौन झूठा है। वैदिक शास्त्र ऐसा बताते हैं ना, और जेन्युइन व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, फिर वो बताएगा कि आपको भगवान कैसे प्राप्त होंगे। तो अब पहले दिन आए और बोले मेरे को भगवान दिखा दीजिए फिर मैं विश्वास करूं, नहीं ऐसा नहीं होता। भगवान को देखना है आपको योग्यता कीमत देनी पड़ेगी, है कि नहीं, कीमत चाहिए है ना, क्योंकि बहुत महंगी वस्तु आप मांग रहे हैं, क्योंकि सबसे महंगी वस्तु है भगवान, उनसे महंगा कुछ नहीं, उनको प्राप्त करिए तो सब प्राप्त। एक हमारे महाराज हैं, उनका नाम सुखदेव महाराज, वो पहले डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर, उन्होंने फिर छोड़ दिया सब कुछ और सन्यासी बन गए। तो एक दिन एक व्यक्ति आया उनके पास, बोले महाराज आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं। बोले मैं महाराज बोले मैं इतना बड़ा त्यागी नहीं, मेरे से बड़े त्यागी आप हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो अंदर से अच्छा लग रहा था लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया सर। महाराज बोले मैं आपको प्रूफ साबित करके दिखा सकता हूँ। तो कैसे महाराज बोले मैंने क्या छोड़ा है, मैंने कुछ पैसे छोड़े, मैंने कुछ संपत्ति छोड़ी, मैंने कुछ जॉब छोड़ा, ठीक है मानता हूँ थोड़ा सा त्याग है, लेकिन आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया, कौन सी ज्यादा महंगी चीज है, धन, तो कौन बड़ा त्यागी है, तो सबसे ज्यादा महंगी वस्तु त्यागी ज्यादा बड़ा त्यागी माना जाएगा ना। एक दूसरे देखा जाए तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता तो ज्यादा बड़े त्यागी है ना? हम तो बहुत धनी हैं, आप सब जैसे यहाँ पे आ रहे हैं भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान को प्राप्त करना उसके लिए योग्यता आनी चाहिए हमारे लिए, और उसके लिए कुछ कीमत देने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि क्या कीमत चाहिए ना? तो कोई आता है नहीं मेरे को भगवान पहले दिखाएंगे, तुम पैसा दो कीमत दो तो तुम्हें दिखाऊंगा, है ना। जैसे आपको स्कूल में बच्चा नहीं बच्चा जाता है और जाके तो क्या पहले दिन बोलता है स्कूल में जाके पहले मेरे को है ना अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए जॉब का फिर आपके स्कूल में दाखिला लूंगा। क्या गारंटी है कि 25 साल पढ़ाई करने के बाद मेरे को जॉब लगेगा? है कोई गारंटी है? नहीं। स्कूल देगा आपको गारंटी? नहीं देगा। कोई स्कूल आपको गारंटी नहीं देगा। मैं गारंटी देता हूँ जॉब हो जाएगा आप एडमिशन कराइए। कोई स्कूल गारंटी नहीं देगा। भले बिल बोर्ड पे लिख दे लेकिन लिख के नहीं देगा कोई स्कूल। प्रचार के लिए लोग लिख देते हैं यहाँ पे गारंटी है आपको लेकिन वास्तव में कोई गारंटी नहीं देगा। कोई स्कूल गारंटी नहीं देगा। तो गारंटी नहीं देगा तो फिर हम क्यों जाते हैं उस स्कूल में? पहले एक प्रोसेस है, पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। तो भगवान जो है सबसे अंत में आप बोल रहे पहले दिन दिखा दो, ये वही बात हो गई ना कि पहले दिन ज्वाइनिंग लेटर दे दो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? या डॉक्टर के पास पहुंचे बोले डॉक्टर साहब मेरे को आप पे विश्वास नहीं है। अच्छा तो क्या करूं, कैसे आपको विश्वास आएगा? डॉक्टर विश्वास तो तभी होता है ना जब रोग ठीक हो जाए। मेरे रोग ठीक कर दीजिए फिर मैं आप पे विश्वास करूंगा, इसीलिए दवाई दे रहा हूं। नहीं, बिना दवाई के ठीक कर दीजिए, मेरे को दवाई पे विश्वास नहीं है आपके। पहले मेरा रोग ठीक कीजिए फिर दवाई। तो फिर दवाई की जरूरत क्या है? तो प्रोसेस ये नहीं है, प्रोसेस ये है कि डॉक्टर के पास जाइए, उससे दवाई लीजिए, फिर खाइए, उसके बाद रोग अगर ठीक ना हो तब आप डाउट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से जब हम यहाँ आते हैं और आपको जो दवाई दी जाती है उसको खाइए, पहले पहले डाउट मत कीजिए, पहले उस दवाई को खाइए और उसको खाने के बाद अगर आपका रोग ठीक नहीं हुआ फिर आप बताइए, ठीक है ना? फिर आप बोल सकते हैं प्रभु जी आप लोगों का दवाई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा दवाई है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन्हें छे औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये औषधि लेकर आए हैं जो माया का नाश करेगी। माया दुष्ट जो तो दुखी जगते सबाए सुखी वैष्णव इच्छा पूर्ण है, ये सारा संसार माया के द्वारा दुखी है ना? तो इसलिए उस माया को नाश करने के लिए नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं ये मंत्र दिए, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी, तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ, इसको लो, इस औषधि को खाओ। नहीं प्रभु जी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है, क्या एक मंत्र करने से मेरे को सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा? मेरे को नहीं लग रहा है, अब क्या करूं आपको लगने के लिए? शास्त्र को बदल दूं आपको लगने के लिए? शास्त्र जब बोल रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं। तो शास्त्र बता रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रन्यथा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन बार बोला जाए कोई भी चीज इसका मतलब क्या है? बहुत पक्का बताया जा रहा है कि कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल भगवान का नाम, ये शास्त्र में बताएगा। अब इतने सारे आध्यात्मिक संस्थान है, कौन भगवान का नाम बता रहा है? कोई बोल रहा है ये क्रिया करो, कोई बोल रहा है वो क्रिया करो, कोई बोल रहा है दर्शन क्रिया, कोई बोल रहा है अदर्शन क्रिया, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं। कहां शास्त्र में लिखा है ये क्रिया करना है, ये करना है, ये ध्यान करना है? कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कलयुग के लिए ध्यान क्रिया ये सब नहीं लिखा है, ये सब मनोगणन बातें। कलयुग के लिए अलग धर्म है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम एष्टो मुख द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। कृतयुग में सत्ययुग में विष्णु का ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में परिचर्या, और कलयुग में हरि कीर्तन, चार युग में अलग अलग धर्म। ये जो ध्यान लगाने का विधि है ये कौन से युग का है? सतयुग का है। हर युग में वही चीज नहीं चलता, अलग अलग समय पे अलग अलग दवाई। जैसे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग ड्रेस है कि नहीं। अभी ठंडी का मौसम है, कोई बोले मेरे को ना गर्मी वाला ड्रेस पहनना है, है? उसने पढ़ लिया किताबों में कि हमें है ना फैशन फैशन डिजाइन के ना शोरूम में गया, ये वाला बढ़िया लग रहा है मेरे को, मेरे को चॉइस ये वाला अच्छा लग रहा है, वो पहन लिया, उसको ठंडा लग गया, मर गया। हालांकि बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किस मौसम के लिए आपको पता होना चाहिए। इस मौसम में वो हेल्प नहीं करेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा लेकिन आपको जान से मार देगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन से मौसम के लिए कौन सा ड्रेस चुनना है। इसलिए जो ड्रेस आपके शरीर को जो है वो ठंड से बचाए रखे ना, जैसे जैकेट पहनना है ना, ये ना विंटर ड्रेस है, ये ड्रेस कोड इस मौसम के लिए। तो कलयुग में मौसम जो है वो अलग है, सतयुग में अलग मौसम था, त्रेता युग में अलग मौसम था। यज्ञ, कई लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग विपासना वाले हैं वो यज्ञ करते हैं, वो होम करेंगे, हैं? पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया। यज्ञ जो है त्रेतायाम, त्रेतायाम जैसे मख, त्रेता युग में यज्ञ, कलयुग में नहीं। और ये कुछ ऐसे संस्थान है जो ध्यान राजयोग, उजला उजला वस्त्र पहनिए, उजला वस्त्र पहन से आप हंस बन जाएंगे, हैं कि परम हंस, हैं? उजला उजला वस्त्र पहनिए, उजली उजली बातें कीजिए और आप बन गए भगवान के शुद्ध भक्त। ऐसा नहीं होता, ध्यान भी कीजिए, ध्यान का प्रोसेस नहीं है कलयुग में। कलयुग जो है वो केवल भगवान का नाम। तो ये जो प्रोसेस है भगवान का नाम लेने से जो है व्यक्ति शुद्ध होता है, ये दवाई दिया भगवान ने हम सबको इस युग के लिए। तो इस दवाई को हमें लेना चाहिए रेगुलरली, तो लेने से हमारा रोग क्या होगा, ठीक होगा। आप देखेंगे, आप दो दिन तक, आपको गारंटी देता हूँ, अभी गारंटी देता हूँ आप सबको, दो दिन तक सब कुछ छोड़ के और भगवान का नाम लगातार लीजिए, आप देखिए आपके जीवन में इमीडिएट चेंज नहीं आया तो फिर बताइए, लगातार आप ले नहीं पाएंगे, सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है। दो दिन तक आप ले नहीं सकते भगवान का नाम, अगर आपने ले लिया किसी तरह से लगातार, फिर आप देखिए आपका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ तो बताइए। इतनी शक्ति है, पावर है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। इसमें इतनी शक्ति डाली है भगवान अपने नामों में, इसलिए इसको कम नहीं आंकना चाहिए। तो जब इन नामों को लेने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य भाव न अन्य, कोई और नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण का चिंतन। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ, केवल मेरा चिंतन। अब बताइए कितने लोग तैयार हैं भगवान के दर्शन के लिए, रेडी? और किसी का चिंतन नहीं करना है कल से, बहुत कठिन काम है। अब टेस्ट करके देखिए, कल बैठ जाइए, सोचिए आज से मेरे को केवल भगवान का अभी से चिंतन। एक घंटे में अगर आपको 500 चिंतन नहीं आया दूसरे चीजों का, तो आप बताइएगा मेरे को, आप नोट करते जाइएगा जो जो चिंतन आएगा, आप समझ, आप इसको देख सकते हैं, है ना? तो इसलिए आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, भगवान का चिंतन होगा ही नहीं। कई लोग बोलते हैं मन में सोचना है भगवान को, हम लोग माला लेके बैठते हैं और ध्यान लगाने का प्रयास करते तभी मन नहीं लगता है, और लोग बिना माला के ही बोलते हैं माला की क्या जरूरत है, ऐसे ही ध्यान लगा दे, माला के बावजूद ध्यान नहीं लगता है। आप लगा के तो देखो, और लोग बोलते मन में भगवान है। कहाँ है भगवान दिखाइए? आसान है? आसान नहीं है। इसलिए जो आचार्यों ने विधि दिया है माला करने का, इस विधि को करना चाहिए, तब जाके भगवान को हम समझ सकते हैं। तो कीमत देनी पड़ेगी, प्राइस है ना, यानी कि अभी तुरंत दिखा दीजिए भगवान। तो उसके लिए एक तरीका है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रॉब्लम होता है। क्लास में आते हैं लेकिन बोलते हैं माला कीजिए, प्रभु जी टाइम नहीं है। तो किसके लिए टाइम है? भगवान के लिए अगर टाइम नहीं है तो किसके लिए टाइम है बताइए? और कौन है भगवान के बाद? कौन है? दो ही जो इस संसार में दो ही है, भगवान और कोई तीसरी वस्तु। तो जो भी वस्तु भगवान के भक्ति में बाधा है, माया क्या है? कई लोग बोलते हैं स्त्री माया है। स्त्री माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है। वो हर एक वस्तु जो भगवान की भक्ति से हमें रोकती है वो क्या है? अगर स्त्री आपको इनकरेज कर रही है भगवान की भक्ति करने की तो वो माया नहीं है, है ना? कई सारे हमारे गृहस्थ डिवोटी है ना, वो सोते रहते हैं, सुबह तो वाइफ उठाती है, आप सो रहे हैं, मंगल आरती का टाइम हो गया है ना, तो वो स्त्री माया नहीं मानी जाएगी, है ना? तो माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ ये है कि जो स्त्री हमें माला करने से रोकती है, है? वो स्त्री क्या है? माया हो जाती है। लेकिन जो स्त्री आपको सपोर्ट कर रही है, आप भक्ति कीजिए, है ना, और समझती है इस संसार के पीछे जो सत्य है उसको, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रह सकता है, नहीं रह सकता है। हम जानते हैं इस बात को कि कोई कितना भी हमारे क्लोज हो हमारे साथ नहीं रह सकता। जब हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो फिर हम क्यों इसको नहीं समझ रहे हैं? केवल एक व्यक्ति है जो भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे हमारे साथ। अब बाकी जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ एक जन्म तक रहेंगे, अगले जन्म में कोई गारंटी नहीं है। हालांकि बोलते हैं सात जन्मों का फेरा है, सात जन्म तक साथ रहेंगे, लेकिन हमें तो देखता हूँ एक ही जन्म में टूट जा रहा है, फेरा लेने के बाद टूट जा रहा है, फेरा नहीं लेते उसके बाद भी टूट रहा है, टूट रहा है ना, इसके लोग फेरा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए कलयुग है, कलयुग में ये सब फेल। सात जन्म भूल जाइए, सात दिन तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो भक्ति में जो आगे बढ़ने में बाधा होकर जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष क्यों न हो, हमें रोक रहा है तो बाधा है। इसलिए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और अपने को आगे बढ़ाइए, इसमें अपने को अंधकार में मत रखिए, है ना, क्योंकि ये संसार बहुत भयानक है। आप लोग नहीं देखते, मेरे को आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है कि हम कैसे नहीं देख रहे हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हर रोज हमारी आंखों के सामने, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज पेपर में देख रहे हैं, क्या चल रहा है संसार में, हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? एक सेकेंड में हमारी स्थिति इतनी खराब हो सकती है। अभी एक भक्त बताए, उनके पिताजी को अचानक पता चला कि उनके चेस्ट में कैंसर हो गया, सडनली सब अच्छा चल रहा है फैमिली, अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। देखते देखते एक हंसता खेलता घर जो है वो रोने लगता है, ठीक है? तो क्यों हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते? तो इसलिए भगवान ने हमें इतना अच्छा व्यवस्था दिया है ना, कि आप, यानी कि हमें परिवार और समाज नहीं रहना है, नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम सब परिवार में रहें, लेकिन सनातन परिवार जो कभी नष्ट ना हो। अब वो परिवार इस संसार में नहीं, वो भगवान के यहाँ, वहां पे जाके अपनी फैमिली में ज्वाइन कीजिए और हमेशा रहिए वहां पर, है ना। भगवान बताते हैं, भगवद गीता में बताते हैं ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम तम मम, जो कभी नष्ट नहीं होता। मेरा धाम जो है जो नष्ट नहीं होता, वहां पे हम सबको जाना है। और ये हो सकता है, जैसे कई बार हम लोग साथ में रहना चाहते हैं पूरा परिवार, अब पूरा परिवार जाइए साथ में धाम दिखते और वहां पे हमेशा रहिए, लेकिन यहाँ पे आप हमेशा नहीं, चाहे कितना भी आप व्यवस्था कर लो, कितना भी अरेंजमेंट कर लो, ये 30-40 साल 50 साल मैक्सिमम, उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन एक बार हम भगवान के धाम चले गए, वहां पे अगर फिर वहां से वापस कोई नहीं आएगा, वहां पे नित्य आनंद। और उसकी विधि क्या है, वहां पे कौन जा सकता है, जो भगवान से शुद्ध प्रेम करता है वही वहां पे जा सकता है। और जो प्रेम नहीं करता है भगवान से, तो क्या होगा, वहां पे जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं, मैं इतने दिन से माला कर रहा हूँ, मेरे को भगवान ले क्यों नहीं जा रहे हैं। अब तो हम डीपली अपने हृदय में झांक के देखे, एक्चुअली हम जाना नहीं चाहते ना? एक बार एक प्रभुपाद ने किताब लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, वो किताब जो है राष्ट्रपति भवन में प्रभुपाद ने राष्ट्रपति को बांटा, एक मिनिस्टर को भी बोला आप भी लीजिए, मतलब इससे क्या होगा, क्या इसको पढ़ने से हम दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। बोले हाँ आप जा सकते हैं, सबसे ऊंचे ग्रह पे जा सकते हैं, गोलोक धाम। बोला अच्छा, अब वापस कैसे आएंगे, क्या वापस भी आने का तरीका बताया इसमें। प्रभुपाद हम वापस क्यों आना चाहते हैं इस दुख भरे संसार में। बोले फिर मेरे को नहीं चाहिए, वापस नहीं आ सकता है? तो वो ऐसा संसार है जहाँ पे जाने के बाद कोई दुख नहीं होता। कहते ना एक गाना भी है, आ चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। कहाँ है वो स्थान, अमेरिका में। अमेरिका में है ऐसा कोई स्थान जहाँ गम नहीं है, आंसू नहीं है, केवल प्यार है? इस पृथ्वी पे तो कहीं नहीं, हर जगह आपको दुखी लोग मिल जाएंगे, हर जगह लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए मिल जाएंगे। वो प्रेम जगत जो भगवान के लिए है, लेकिन जिसने गाया उसको भी नहीं पता, वो नहीं ले जा सकता, उसने गा दिया बस, है ना, उसने गा दिया है? लेकिन उसको पता नहीं है एक्चुअली वो जगह है कहाँ, वो जगह भगवान भगवान बताते हैं ना, तद धाम परम वो मेरा धाम है। हम सबको वहीं जाना है एक दिन। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, है ना, टाइम लेना आपके ऊपर है, लेकिन एक दिन जाएंगे तभी हमारा संतुष्टि होगी। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इस विधि को अपनाइए, महामंत्र का जप, भक्तों का संग रेगुलर कीजिए, और टाइम देना पड़ेगा, है ना, क्या सबसे मुश्किल चीज टाइम जो है नहीं हमारे पास भगवान के लिए। ओके, हरे कृष्ण।